समय सार लेक्चर नंबर 836 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धे शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवमं गदिं पते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुदके वली भणिदम।
यह कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार और उस समय सार के ऊपर जो अमृत चंद्राचार्य जी ने जो परिशिष्ट लिखे हैं और उस परिशिष्ट में जो सैतालिक शक्तियों की बात आई है उसमें हम आज जीवत्व शक्ति को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम पृष्ठ क्रमांक प्रवचन रत्नाकर भाग 11 का 12वें नंबर के पेज पर हम आए हैं और ऊपर से पहला पैराग्राफ पकड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ जहां लिखा है यहां बात ये हो रही है कि यहां आत्मा को जब ज्ञान मात्र कहा है तो ज्ञान मात्र कहते उसमें अनेक अन्य धर्म कहो या गुण कहो वह भी गर्भित है। इस बात को नक्की करते हुए अभी कौन कौन से गुण हैं तो कह रहे धर्म है कहो या शक्ति है कहो, तो कह रहे ये जिसको हम कहेंगे जीवत्व नाम की शक्ति है, यानी अनादि काल से यह जीव का जो जीवपणा है वह जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसका जो चैतन्यत्व है वह चैतन्यत्व कहो या जीवत्व कहो वह स्वयं अपने कारण से है। दूसरे के कारण से यह जीव जी रहा है या जीता था और जिएगा, इसलिए उन्होंने ये बात बताई, ये द्रव्य कर्म द्रव्य प्राण आदि की जो बात कही है वह तो कोई उससे जीव का लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि जीव जो अनादि काल से विद्यमान है तो उसके जीवपने के कारण से जीवत्व शक्ति जो है उसको यहाँ चैतन्य प्राण कहा है, भाव प्राण कहा है।
आपके प्रश्न का उत्तर आया ना, प्रश्न आपका था ना, ये जड़ प्राण और जीव के प्राण भाव प्राण। अभी उनका प्रश्न था, ये जो कल हमने देखे थे 11 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, पांच इंद्रिय मनोवचन काया आयुष और श्वासोश्वास, ये जो दश द्रव्य प्राण कहे तो वो तो जड़ रूप है क्योंकि परद्रव्य में घटित होते हैं ना ये सब, तो जीवना स्वरूप ना तेनो सर्वथा अभाव छे, सर्वथा बात, तो जीव में भी कुछ है कि नहीं है, तो जहां इंद्रिय प्राण कहे है वहां जीव का कौन सा ज्ञान चल रहा है, क्षोभसम ज्ञान, तो क्षोभसम ज्ञान रूप भाव प्राण है वहां पर, परंतु क्षोभसम जो है ज्ञान क्या वो जीव का स्वभाव भाव है, क्या सिद्ध भगवान उसके बिना है कि नहीं है, तो सिद्ध भगवान अनंत काल तक तो ये क्षोभसम भाव बिना है, परंतु उनके प्राण है कि नहीं कौन से, तो वहां तो केवल ज्ञान रूप वो तो पूर्ण विकसित आत्मा की जो शक्ति है उसको वहां भाव प्राण में लिया है, या जो अनादि अनंत जो स्वभाव भाव है उसको भी भाव प्राण में, इसलिए एक सोपम भाव को वहां पर उन्होंने अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव का कहा। तो उसमें किस किस को लिया, एक सोपम रूप भावेंद्रियों को भी लिया, ये मन वचन काय जो है वो तो परद्रव्य है, उसका तो जीव में अभाव है, परंतु उसके निमित्त से यहाँ जो यहाँ योग का कंपन है जीव में उसको भी वो अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा। यानी जो जो बातें हमने दस प्राण जड़ कर्मों में नहीं जड़ में देखे है, जड़ प्राण देखे है, उसके यहाँ जीव में क्या क्या होता है, तो जड़ में लिए पांच इंद्रिय प्राण और जीव में लिए सूक्ष्म रूप भावेंद्रिय। जड़ में लिया मन वचन काया यानी उसके बल, और जीव में लिया उसके निमित्त से होने वाला कंपन यानी जीव के आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है आत्मा में है ना, वो भी विभाव भाव है, क्योंकि अकंप दशा होना योग रहित होना वो स्वभाव है। अब कहते वहां तो लिया था आयुष यानी वहां जड़ कर्मों की बात ली थी, आयु कितनी है उसको हमने आयुष कहा था, और जीव में क्या है उस रूप रहने की योग्यता, जैसे मनुष्य आयु है वो आयु कर्म की बात है, और जीव मनुष्यपने रहने का जीव की जो योग्यता है वो जीव में घटित करना है। और वैसे ही श्वासोश्वास तो जड़ में लेना है, और श्वासोश्वास थवानी पर्यायनी योग्यता वो जीव में लेना। इस तरह से ये जीव में जो जो घटित किए है वो सारे विभाव भाव है, अशुद्ध निश्चय नय से उसको घटित किया है जीव के है,
अशुद्ध द्रव्य प्राण है,
अशुद्ध निश्चय नय थी छे एम कहू ना 12 पेज पर, अने शुद्ध निश्चय नय थी ते काई जीवना वास्तविक परमार्थ जीवन रूप नती। क्यों? क्योंकि ये सब अभी जो हमने देखे थे योग है यक्षोपम ज्ञान है ये सब सिद्धों में तो है ही नहीं है, तो इसलिए वास्तविक वो जीव के नहीं है ऐसा कहा। हाँ, अशुद्ध
भाव प्राण कहा,
उसी को विभाव कहा, क्योंकि जीव ये जो
अपूरा कहो अधूरा कहो, क्योंकि क्षोपम ज्ञान जो है वो कहीं विभाव नहीं है,
कहीं कहीं उसको ये जो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप है इसलिए उसको वहां उसमें लेते हैं, वो तो उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं लेनी, हम यहाँ जो विषय चल रहा है उसी की चर्चा करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो क्या कहते हैं ये दूसरी तीसरी लाइन में, ये अशुद्ध भाव प्राण विनाज सिद्ध भगवंतो सादि अनंत परम सुखमय पारमार्थिक जीवन जीवे छे। तो ये पारमार्थिक जीवन जीवे छे तो उनके वो जीवत्व जो शक्ति है वो ऐसे क्षोभम भाव रूप तो है नहीं है, तो ये तो शुद्ध भाव प्राण कहेंगे वहां पर। तो ये बात अभी पूछी थी उन्होंने प्रश्न रूप से, अभी हमको ये चौथे पैराग्राफ से पढ़ना है आज। हाँ बिल्कुल, अभी भी भाव प्राणों से ही जी रहा है, परंतु अभी पर्याय
भाव प्राणों से ही जीतता है।
हाँ
अभी भी नहीं, अभी त्रिकाल सुनो, कहने में आएगा कि दस प्राणों से ये द्रव्य प्राण जो है उसे कहने में आएगा, कहना उससे जी रहा है ऐसा कहना यह उपचार का या व्यवहार का कथन है, वास्तव में मैं जो मेरी जो अस्थि है विद्यमानता है मैं जो टिका हूँ वह मेरे स्वभाव के कारण, वो स्वभाव कौन सा है जीवत्व शक्ति। देखो इस पत्र अभी इस प्रश्न का उत्तर फाइनल यहाँ देखेंगे हम, पेज नंबर 12 पे दूसरे नंबर का जो पैराग्राफ है, ज्ञान प्राण दर्शन प्राण आनंद प्राण वीर्य प्राण एम आ शक्ति रूप चैतन्य भाव प्राण छे, ये चैतन्य भाव प्राण भी ये सब जीव के स्वभाव भाव ही है,
वो त्रिकाल है।
हाँ आ चैतन्य भाव प्राण वड़े जीव त्रिकाल जीवे छे, आई ना बात।
और ऊपर के भी ऊपर के भी पैराग्राफ में कहा था कि ये जो दस प्रकार के व्यवहार प्राण और वो निश्चय प्राण की चर्चा की ना, तो अहीं ए बात नथी, जीवत्व शक्ति में वो दस प्राण की कोई बात नहीं है। फिर भी प्रश्न पूछा था कि जीव दस प्राणों से तो जीता है ना, उसके उत्तर में ये सारी चर्चा आई थी।
और अगला उसी लाइन में आगे आए तो जीव सदाए पोताना चैतन्य भाव प्राण थी जीवे छे, ये सदाय में कौन सा काल लेना भाई, त्रिकाल लिया ना, और नीचे भी वही बात कह रहे हैं। इस नीचे के पैराग्राफ में दूसरे पहले लाइन के आखिरी शब्द आ चैतन्य भाव प्राण वड़े जीव त्रिकाल जीवे छे, आत्मद्रव्य छे तेना जीवन ने कारणभूत, जीवन यानी उसका जो कोई चल रहा है, जो कोई विद्यमानता है वो जीवन, आ चैतन्य भाव प्राण छे, आवा चैतन्य भाव प्राण ने धारी राखवा ते जीवत्व शक्ति नु स्वरूप छे, स्वभाव छे, परंतु देह ने इंद्रिय ने आयु ने के राग ने धारी राखवा ते जीवत्व शक्ति नु स्वरूप नथी। अरे आत्मानी आनंद शक्तियों मां देहादि जड़ प्राणों ने धारण करे एवी कोई शक्ति नथी, तेथी जड़ प्राणों थी हूँ जीवू छू ए माने तो ए मिथ्यात्व छे, एवू जीवन पन मिथ्या छे। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अभी आपके प्रश्न का शायद उत्तर मिला हो ऐसा समझकर आगे बढ़ेंगे।
तो हम जीने के लिए क्या क्या करते हैं वो देखना अभी। हाँ? हमारा जीवन चालू रहे तो पहले में पहले जाके डॉक्टर के पास जाएंगे। और फिर उसके सारे कहीं मर न जाए इसके लिए जांच करवाएंगे।
फ्री में मिलता है ना 2000 का।
क्यों लक्ष्मी बहन आपको इतना क्यों प्रश्न चिन्ह क्यों है? ये हम क्या सोचते हैं? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कोई बीमारी नहीं आ जाए, कोई हम मर न जाए, है ना? परंतु क्या हमने अपना सच्चा जीवन इसी से माना है ना कि नहीं माना? यानी देह के लिए हम कितने केयरफुल है, कहीं ये संयोग छूट न जाए। या क्या लिखा देखो, आत्मानी अनंत शक्तियों मां आ देहादि जड़ प्राणों ने धारण करे एवी कोई शक्ति नथी, तेथी जड़ प्राणों थी हूँ जीवू छू माने तो मिथ्या छे। तो हम कौन कौन से प्राणों की रक्षा करना चाहते वो देखना अभी अपने अपने बात।
श्वासोश्वास सुधारने के लिए वो बाबा का
अभी सब कोई सिस्टम फेल नहीं हो जाए हमारे। हाँ
ये तो भाई सुनना, यहाँ आचरण की यानी चारित्र गुण की और श्रद्धा गुण की टसल चल रही है। पहले में पहले हमें सुधार करना है
अभिप्राय,
श्रद्धा का अभिप्राय का, मान्यता में हमारा कोई दोष न रहे। और ये मान्यता जिसकी सही हो गई है वह भी श्वासोश्वास सुधारने का प्रयत्न करेगा, दवा खाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। यहाँ फिर से ध्यान में रखना, तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? फिर सरला बेन का क्या होगा ऐसा मत सोचना। ख्याल में आया? हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी, मैं जानता हूँ। हाँ, तो हमें तो ये देखना है कि हमारी श्रद्धा जो है उस श्रद्धा का दोष पहले टलता है कि नहीं, उस वक्त उस जीव के चारित्र दोष रहेगा। भाई कोई डेली रूटीन लाइफ अपना तोड़ना नहीं है ना छोड़ना है, ना तुम्हारे छोड़ने से छूटता भी है, वह तो जब ही छूटना है तब अंदर से ऐसे परिणाम भी होंगे और वह परिणाम तो आत्मानुभूति के द्वारा ही होंगे। भैया केवल बाह्य में सारे आचरण हमने चेंज किया, अरे हमको वहां जाते किधर अमेरिका में, अभी तो हमको यहाँ सब छोड़ छाड़ के हम वहां बंबई में आके रहने वाले, साइन में जगा लेंगे और ऐसा करेंगे ना वैसा करेंगे, और यहाँ साइन के लोग साइन छोड़ के दूर दूर जाना चाहते हैं। देखो अपनी मम्मी नहीं गई क्या? कुछ भी कारणवश गई तो सही क्या? नहीं मतलब ये है जब जैसा होना है भाई, संयोग बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है, हमें ये बात समझनी है। हम संयोग को पलटाना चाहते जो अपने से कभी पलटते ही नहीं, और जो पलटते हुए को हम रोक नहीं सकते। हमारी श्रद्धा तो ये होनी चाहिए कि मैं जी रहा हूं वह तो मेरे भाव प्राणों के द्वारा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, ये तीन समय या चार समय जो क्या कहते हैं विग्रह गति में जीव जा रहा है, तो कौन से द्रव्य प्राण उसके पास है बोलो, श्वासोश्वास तो करता होगा कि नहीं? हाँ प्रेरणा बहन, नहीं फिर भी जी रहा है, क्यों? ये जीवत्व शक्ति। ऐसा हम उस नतीजे पे पहुंचे और हमें हम समझाएं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दूसरे से कोई समझता ही नहीं है। हम समझाने वाला 10 बार समझावे ना, पर हम कुछ ध्यान ही नहीं दे, सुने ही नहीं, सुनकर भी न सुने करें, नहीं होने वाला है। ये बात ऐसी है भाई साहब, प्रश्न पूछते कि हमें इसमें ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर आ गया ना भाई। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर जितना मुझको बुलवाओ उतना मैं अधिक बोलूं, आपने को रुकना है ना। आगे चलते हैं, देखो आहा, त्रण लोकना नाथ भगवान जिनेश्वर देव आत्मानु स्वरूप केवू एवू फरमावे चे के आत्मा मा अनंत शक्तियो, इसका ही अर्थ यहाँ अनंत गुणों छे, ते एक शक्ति बीजा बीजी शक्ति रूपे थती नती। अब क्या कहना चाहते हैं, ए नाम की एक शक्ति है, बी नाम की एक शक्ति है, ए नाम की ए शक्ति बी रूप कभी नहीं होती। एक नियम ध्यान रखना, क्या लिखा, एक शक्ति बीजी शक्ति रूपे थती नथी। अभी हम इसको थोड़ा सा नाम बदल कर, एक गुण बीजा गुण रूपे थतो नथी, यहां तक तो बात ख्याल में आई, और आगे नई बात बताने वाले हैं। परंतु दरेक शक्ति नु रूप बीजी अनंत शक्तियों मा होई छे, क्योंकि अनंत शक्तियों में, क्योंकि एक द्रव्य में अनंत गुण है कहो, या अनंत शक्ति है कहो, या अनंत स्वभाव है कहो। अभी यहां क्या कह रहे हैं, एक गुण, अभी शक्ति को मैं दूर कर रहा हूं जरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप, वहां गुण रूप का, यहां कह रहे गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, एक गुण का रूप अनंत गुणों में होता है, एक शक्ति का रूप अनंत शक्ति में होता है। पहले क्या बताया, एक गुण या एक शक्ति अन्य यानी दूसरे शक्ति रूप कहो या गुण रूप, और यहां क्या कहा, एक शक्ति का रूप, बीच में का डाला हो, एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में होता है। अब ये भी बताएंगे, देखो फिर से इसको दो दो तीन तीन बार पढ़ना था, इसलिए मैंने कल आज ही रखा। क्या कहा, लास्ट लाइन फर्स्ट, लास्ट वर्ड्स फर्स्ट लाइन, आत्मा मा अनंत शक्तियों ने गुणों छे, ते एक शक्ति बीजी शक्ति रूपे थती नथी, परंतु दरेक शक्ति नु रूप बीजी अनंत शक्तियों मा होई छे, जेम के आत्मा मा सत्ता एटले अस्थि एक गुण छे, ते अस्थि गुण बीजा अनंत गुण मा जतो नथी, याने एक गुण बीजा गुण रूपे थतो नथी। क्या कहा, ते अस्थि गुण बीजा अनंत गुण मा जतो नथी, पण अस्थि गुण नु रूप बीजा अनंत गुणों मा होय छे। अभी ये समझाने के लिए अभी उदाहरण देते हैं, ज्ञान छे, दर्शन छे, वीर्य छे, छे छे का अर्थ अस्थि अस्थि विद्यमानता सत्ता जो भी लेना है, एम अनंत गुणनु छे,
अनंत गुणनु छे पणु,
अनंत गुणनु छे पणु छे,
ये छे पणु को इन्वर्टेड कर देना, એમ અનંત ગુણનું છે પણ
છે, તે અસ્તિત્વ ગુણનું રૂપ છે, અસ્તિત્વ ગુણ નહીં પણ અસ્તિત્વ ગુણનું રૂપ બીજા અનંત ગુણમાં છે, આમ દરેક શક્તિમાં બીજી અનંત શક્તિઓ નથી પરંતુ તેમનું રૂપ હોય છે। એ વાત ખ્યાલમાં આ ગઈ ક્યાં કે નહીં સમજમાં આવે?
देखो, एक गुण है वो दूसरे गुणमय नहीं होता, यानी दूसरे गुण रूप नहीं होता।
देखो एक मिनट, आप में ज्ञान गुण है क्या? है ना, चारित्र गुण है क्या? तो ज्ञान गुण चारित्र गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण जुदा है, चारित्र गुण जुदा है, ये बात ख्याल में है। वैसे आप में एक ज्ञान गुण है और एक अस्तित्व नाम का गुण है, लेकिन ज्ञान गुण अस्तित्व गुण रूप नहीं होता। लेकिन ज्ञान का अस्तित्व है ऐसा हम कहते हैं ना, ज्ञान है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जो अस्तित्व गुण है उसका रूप ज्ञान गुण में, इसलिए हम कहेंगे ज्ञान है। अब वैसे दर्शन है, चारित्र है, सुख है और अनंत गुण है, ये है पने जो बता रहा है वह अस्तित्व नाम का, अस्तित्व नाम के गुण का रूप अन्य द्रव्यों अन्य गुणों में है।
देखो ये जो सारे गुण है ना वो द्रव्य में है, अस्तित्व गुण द्रव्य में है, परंतु अस्तित्व गुण ज्ञान गुण में नहीं है, गुण में नहीं है, वो उसका रूप है। क्यों? क्योंकि वहां उसकी भी अस्थि है, तो उसकी अस्थि अगर वो पराधीन हो जाएगा, अस्तित्व गुण के कारण ही ज्ञान गुण टिका हुआ ऐसा कहेंगे तो ज्ञान गुण पराधीन हो जाएगा। तो एक ही द्रव्य के जो सभी अनंत गुण है उसमें एक एक गुण का रूप दूसरे में है, अगर हम ऐसा मानेंगे। प्रश्न क्या है? यदि हम ऐसा मानेंगे कि एक गुण दूसरे गुण में है, ज्ञान गुण में अन्य अनंत गुण है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, क्या आफत आएगी? हाँ, नहीं, अन्य अनंत गुण एक एक गुण में हो जाएगा, प्रत्येक गुण एक एक द्रव्य हो जाएगा, ख्याल में आती है ना बा? तो ऐसा तो ही नहीं, निर्गुणा गुणा हमने तत्व सूत्र में देखा है, सूत्र है कौन सा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, सभी गुण द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य में अनंत गुण है परंतु गुणों के आश्रय से अन्य गुण नहीं है, फिर भी एक गुण का रूप दूसरे में है। क्योंकि ये अभी ऐसे है ना, ये जीव का अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व अनंत गुण है उसके, तो वो सारे ज्ञानमय है कि नहीं, कि जड़ है?
ऐसा नहीं समझाओ, मैं और आसानी से समझाऊंगा। देखो अस्तित्व नाम का गुण है कि नहीं, वो कैसा गुण है, विशेष गुण है कि सामान्य गुण है? सामान्य। तो अस्तित्व जो है वह है पना बताता है, तो जो द्रव्य पुद्गल द्रव्य है उसमें अस्तित्व गुण है कि नहीं? तो वो जो पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व गुण है वह जड़ रूप है या चेतन रूप है, कैसा जाना आपने? यानी यहाँ चेतनत्व भी, जो चेतन पना जो है, चेतन गुण है, उसका रूप इस अस्तित्व गुण में, तो हम कहेंगे कि आत्मा के अस्तित्व चैतन्य रूप है, आत्मा में जो अन्य गुण है वो इस रूप से है, चैतन्य पने, क्योंकि हम रूपी और अरूपी को भी ले लो कि ये जीव द्रव्य जो है उसका जो अस्तित्व गुण है वो रूपी होगा क्या अरूपी होगा? हाँ, जड़ रूप है,
वो जड़
और आत्मा
है,
में है, वो चेतन रूप है,
जड़ रूप है नहीं, वो जड़ रूप ऐसा नहीं, वो हो गया ऐसा नहीं समझना, उसमें जड़ का रूप अचेतन का रूप है ना उसमें,
यानी पूछा ना वो जड़ का रहेगा या चेतन रहेगा? पुद्गल द्रव्य का जो अस्तित्व गुण है वो जड़ स्वरूप होगा या चेतन स्वरूप होगा? जड़ स्वरूप। वैसे ही जो अस्तित्व गुण है कौन सा,
पुद्गल का
वह रूपी होगा क्या अरूपी होगा? रूपी होगा ना, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, और यहाँ जीव द्रव्य के साथ हम तुलना कर रहे हैं, जीव द्रव्य अरूपी है, तो जीव द्रव्य का अस्तित्व भी अरूपी होगा, अलग अलग है ना साहब, जीव का अस्तित्व अलग है, अस्तित्व गुण अलग है, पुद्गल का अस्तित्व गुण अलग है,
यानी जीव के अस्तित्व गुण में अरूपी गुण का रूप है, तो वो अस्तित्व गुण भी उसका अरूपी है। जीव के सभी गुण अरूपी होंगे कि नहीं होंगे? क्या कोई गुण एकाद गुण रूपी भी होगा?
नहीं। तो अभी हम लोग बोलते हैं ना, बताओ बताओ आत्मा को बताओ, कैसा बताओ? अरे कैसा बताएगा, उसमें अरूपी गुण का रूप है, चेतनत्व बताए ना बेटा, चेतनत्व बताए ना।
जीव का जो अस्तित्व, जीव की जो अस्थि है वो चैतन्यमय है कि जड़ है? हाँ, तो जीव का अस्तित्व चैतन्यमय है, तो अस्तित्व गुण भी में ज्ञान गुण का या चेतन गुण का रूप है।
मैंने इसीलिए ज्ञान और अस्तित्व को दोनों को लिया, पहले ज्ञान का अस्तित्व बताया, अभी अस्तित्व का चेतनत्व बताया। ख्याल में आई बात? अभी आपको कुछ पता लगा? ऐसा हर एक में लगाएंगे हम,
यानी वो सर्वथा भिन्न नहीं है। भेद करने के लिए हम द्रव्य कैसा है समझने के लिए उसके अनंत गुणों के भेद करते हैं, परंतु वो पूरा मिलकर एक एंटिटी है, तो वहाँ एक एक गुण का रूप अन्य अनंत गुणों में।
यानी हम पहला गिनते, कोई भी द्रव्य में 10 गुण है, 10 अनंत की बात हम बाद में करेंगे, तो 10 गुण है, तो ये 10 गुणों की सत्ता जुदी जुदी है। तो अभी क्या कहते, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे में होगा। हाँ, नहीं ना, उल्टा कह रहे हैं हम।
द्रव्य के आश्रय से गुण रहे,
फिर से रिपीट करो।
देखो, गुण के आश्रय से गुण नहीं रहते, परंतु सभी गुण द्रव्य के आश्रय से, हम अनंत गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं ना, यानी द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। ये द्रव्य के आश्रय से रहते हैं इसे कहना भी ये थोड़ी अटपटी भाषा है, क्योंकि द्रव्य क्या है, गुणों का समूह हो गया, अभी उसके आश्रय से और कौन से गुण रहेंगे? परंतु वो जो अनंत गुणात्मक जो है द्रव्य, तो हम कहेंगे वो द्रव्य के आश्रय से रह रहे हैं। समझा है कैसे ना, भाषा में तो लिमिटेशन आती है। जैसे हम कहेंगे द्रव्य के 7 गुण रहते हैं, क्या 7 नहीं रहते? गुणों के समूह को हम द्रव्य कह देते हैं, तो हम द्रव्य में रहते ऐसा कह भी सकेंगे, ये द्रव्य के आश्रय से रहते ऐसा कहेंगे, ये कहने की बात है, क्योंकि गुण पर्याय के समूह को ही हमने द्रव्य कह दिया ना।
अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना, क्योंकि ये अभी विषय खत्म हो जाएगा ना, दिल में वही बात रहेगी कि हमें बात खल में नहीं आए। ये क्या है, थोड़ा सा मैं भी बहुत साल तक इसमें कंफ्यूजन में रहता था, और अभी थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। ये बार बार हम पढ़ेंगे तो ये बात बहुत आसान है, समझने में थोड़ी सी कभी गड़बड़ी लगती है। इतना समझना कि एक गुण दूसरे गुण रूप ट्रांसफर नहीं होता है, यानी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, क्योंकि दो गुण का अभी आपने अलग तरीके से बताया, जिसके तत्वार सूत्र का आश्रय लेते हुए हम दूसरी तरफ से सोचेंगे ना, सोचने में क्या है, दो गुण मिलकर एक गुण हो गए, 3 गुण मिलकर एक गुण हो गए, 4 गुण मिलकर एक हो गए, यानी एक रूप हो गए ना दोनों ही, ऐसे अनंत एक ज्ञान में ही सारे आके समा गए। तो हमने जो जिनेंद्र भगवान ने बताया, हमने जो सुना था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो बात खोटी ठहरेगी, यानी हमारे ही मान्यता में कुछ गड़बड़ है, जिनेंद्र भगवान ने तो सही जाना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, एक गुण बदलकर, क्योंकि हमने अगुरु लघुत्व गुण को देखा था, उसमें पहले क्या कहते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, यानी एक द्रव्य ट्रांसफर होके दूसरा जीव पुद्गल नहीं होगा, या पुद्गल जीव नहीं होगा। अनादिकाल से हम कोई किसी न किसी पुद्गल के साथ रह रहे हैं, लेकिन जीव जीव रूप से ही रहा है और पुद्गल पुद्गल रूप से ही है। दूसरा प्रकार क्या है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, यानी अभी यहाँ जो बात चल रही है कि ज्ञान गुण अस्तित्व गुण रूप नहीं होता और अस्तित्व गुण ज्ञान रूप नहीं होता है, लेकिन अस्तित्व गुण का रूप, आपके पास ज्ञान है क्या, मैं पूछूंगा भाई, है कैसा बताया, उसमें अस्तित्व का रूप है, ख्याल में आया। तो आपका ज्ञान गुण, आप जो हो, आपका जो अस्तित्व है वह जड़मय होगा कि नहीं, कैसा है? तो चेतन के हमने दो भेद किए थे, ज्ञान दर्शन। तो ये ज्ञान, मेरा अस्तित्व भी ज्ञान रूप है, ये कहने में और समझने में थोड़ी सी ऐसी ऐसी गड़बड़ी होती है। बरोबर है ना, आपकी आपकी मान्यता सही है कि स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि जो अनेक गुण है उसके कारण से पुद्गल को जड़ द्रव्य, सॉरी रूपी द्रव्य या मूर्ति द्रव्य कह रहे हैं और कहते भी हैं। अभी मुझे ये बताओ, सामान्य गुण किसको कहते हैं आप? एक ही द्रव्य, एक ही गुण छह द्रव्य में रहेगा कि नहीं? अलग अलग है ना। तो अभी मान लो ये पुद्गल है, आप जीव है, तो ये पुद्गल का अस्तित्व गुण उसमें होगा कि नहीं? तो वो कैसा है? जड़ रूप है या अचेतन है जिसको हम कहेंगे? रूपी है कहो ना। और आप जो चेतन हो तो आप में भी अस्तित्व गुण अपना स्वयं का जुदा है, इसका आप में नहीं है, तो वो कैसा है? वो चेतन में है और अरूपी है। बात ख्याल में आई? बहुत अच्छी बात है ये, मतलब समझ में आवे ऐसी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले पहले थोड़ी सी गड़बड़ लगती है क्योंकि गुण रूप और गुण का रूप इसमें जरा गड़बड़ होती है। गुण रूप यानी ट्रांसफर हो जाना, और गुण का रूप यानी उसका कोई रूप उसमें अंश नहीं, ये बात ध्यान में रखना। यानी इसमें से थोड़ा सा एक 1% पॉइंट माइनस इतना इतना परसेंट, कोई नो परसेंट एट ऑल, यानी वो अंश नहीं है, रूप है उसका। हाँ आगे चले, अभी फिर से पहले से पढ़ता हूँ, सेकंड लाइन से। ते एक शक्ति बीजी शक्ति रूपे थती नथी, परंतु दरेक शक्ति नु रूप बीजी अनंत शक्तियों मा छे, जेम के आत्मा मा सत्ता, सत्ता का अर्थ उन्होंने अस्ति किया, अस्तित्व कहो, एक गुण छे, ते अस्ति गुण बीजा अनंत गुण मा जतो नथी, जतो नथी का अर्थ क्या, उसमें वो प्रवेश नहीं करता, उस रूप नहीं होता। पर अस्ति गुणनु रूप, गुणनु कहू ने, कहू ने भाई, हम गुण का कह रहे थे, यहाँ गुणनु रूप बीजा अनंत गुणमा होई छे, इसके लिए क्या उदाहरण दिया, ज्ञान छे ने, तो हाँ ज्ञान छे, दर्शन छे, वीर छे, एम अनंत गुणनु छेपणु छे, हेपना है, ते अस्तित्व गुणनु रूप छे, यानी वो अस्तित्व गुण के निमित्त से हम बता रहे हैं। अस्तित्व गुण नहीं, पन अस्तित्व गुणनु रूप बीजा अनंत गुणमा छे, आम दरेक शक्तिमा बीजी अनंत शक्तियो नथी, परंतु तेमनु रूप होई छे। एवी रीते जीवत्व शक्तिनु रूप बीजी अनंत शक्तियो मा होई छे। यानी हमारे ज्ञान है ना, अभी तो दर्शन पन कैसा है कि जीवत्व, यानी उसकी भी सत्ता है, अन्य गुणों की भी सत्ता है, सबकी सत्ता है, सबकी सत्ता है, ऐसे जे बड़े अनंत शक्तियों जीवंत छे, जीवंत ज्ञान, जीवंत दर्शन, जीवंत वीर, इन्होंने जीवंत कहा, हम उसको चेतन कह रहे थे इतना टाइम। आहा एवी अनंत शक्ति जेनु जीवन छे, एवो भगवान आत्मा छे भाई, तने खबर नथी, पण अंतरंग मां तू दृष्टि एटले नजर कर करे तो तू न्याल थई जाय, एवी अनंत चैतन्य संपदा थी भरेली तारी चीज छे। आई जीवत्व शक्ति कहीने आचार्य भगवान तारू वास्तविक जीवन बतावे छे। अमने तो संवत 1978 मां आ समयसार हाथ आयु, ये 1978 याने ईस्वीसन अभी जो चल रहा है 1921, क्योंकि इसमें 57 माइनस करो 78 में, तो ईस्वी सन मिलता है क्या कहा? संवत लिखा ना भाई, हमने तो संवत 1978 मा आ समय सार हाथ आयू त्यारे सहज एवा उद्गार निकलेला के अहो ओ शरीरी थवा माटेनु आ शास्त्र परमागम छे। अशरीर एटले अहीं लख्युं सिद्ध थवा माटे। भाई आ शरीर मन वाणी इंद्रिय छोकरा बेरा छोकरा ने पैसा ए बधु तो धूल धानी छे, मसान ना भपका छे। ये समझ में आया? मसान ना भपका है ने? देखो देखो, जब भी वो कोई मृत व्यक्ति है उसको वो पहले तो लकड़े के ऊपर चढ़ा के उसको आग लगा दे तो अंदर ये लाख अपने हड्डी में फास्फोरस रहता है तो उसके कारण वो अधिक चमकता है, ज्वाला तो अधिक प्रज्वलित हो जाते हैं। तो ये मसान ना भपका छे, इसका अर्थ क्या है? वो पुद्गल है। किसको किसको लिया, कहाँ से चालू किया? शरीर से, यानी जो अत्यंत वेरी मच क्लोजेस्ट ऐसी जो वस्तु है अपने आत्मा से बिल्कुल नजदीक, तो शरीर है, मन है, वाणी है, इंद्रियां है, और बाद में क्या है? छोकरा बहरा आदि, और इसके बाद पैसा। ये बधु धूलधानी छे, मसान ना भपका छे। जे मसान आइए लिखा है ना भाई, देखो देखो, जे मसान मा हाड़का पड़ेला होय तेमा फोस्फरस ने लईने चमक चमक थया करे, तेमा जगत मा आत्मा सिवाय बाहर जे भपका देखाय छे ते फोस्फरस नी चमक जेवा छे। लाखो ना बंगला होय करोड़ो नी संपत्ति होय ए बधु जड़ माटी धूल छे, तेनी मूळ अज्ञानी जीवो किंमत एटले महिमा करे छे। आहा हा, अंदर अनंत अनंत चैतन्य लक्ष्मी नो भंडार प्रभु पोते छे, तेनो महिमा ने प्रतीति जेने आवता नथी ते बधा जीवो दुखी छे। बारमा पैसा वाला होय तो ए दुखी छे, ए पैसा वालाओ ने लोको भले सेठ कहे पण ए बधा हेठ छे। हेठ यानी समझे क्या? नीचे नीचे, हाँ आई हेठ वेस्ट ऐसा बोलते हैं यानी, हाँ हेठ क्या बोलते हैं? ए एनो अलग अर्थ छे। हेठ यानी वो झूठा भी होता है और नीचे भी होता है, हाँ दोनों अर्थ होते, कोई बात नहीं। भले हम आप जितनी गुजराती नहीं जानते, लेकिन
हेठी में शब्द क्या से आया? प्राकृत में हेठी में आता है ना शब्द, हेठी में नीचे का उसको हेठी
में, वो क्या बोलते हैं?
ऊपरी में हेठी में मज्जी में,
मज्जी में मज्जी में, और उत्कृष्ट को
ऊपरी में,
ऊपरी में ऊपरी में, ये शब्द है हेठी में नीचे। और हेठू यानी आपका कहने हेठू खावा है ना
ऐसा,
यानी ये पैसा बहुत लोगों ने वापरा हुआ तेरे हाथ में आया है, हेठू चे बधु एम के आपको ऐसा कहना है? एम नथी, अज्ञानियों ने धूलनी पैसा नी कीमत छे तेथी तेओ पैसावाला ने सेठ कहे छे, पण खरेखर तेओ सेठ नथी। अंदर चैतन्य ने लक्ष्मी स्वरूप पोते छे, तेना प्रतीति ने अनुभव करे ते वास्तव में शेठ एटले श्रेष्ठ छे, लोक में तेनु जीवन श्रेष्ठ छे। अभी ये श्रेष्ठ के अगेंस्ट नीचापन होगा ना बेन, उसके सामने एठू नहीं होगा। भाई आ तारा घरनी वात एक बार सांभळ तो खरो, अरे प्रभु अनंत चैतन्य संपदा थी भरेली तारी चीज तेने कदी नजर मां लीधी नथी नहीं, अने इंद्रिया ने इंद्रियना विषयो ने ज लक्ष्य मां लीधा, तने शू थयू प्रभु? ભગવાનની ઓમ ધ્વનિમાં તો આ એવું કે દ્રવ્યેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયો એ બધાનું લક્ષ્ય છોડી જ્ઞાન સ્વભાવ વડે જે અધિક ભિન્ન છે એવા ભગવાન આત્માનો અનુભવ કરી જેને ઇન્દ્રિયોને જીતી છે તેનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે। અભી યહાં જો લિખા હૈ ના, એ બધાનું લક્ષ્ય છોડી, થર્ડ લાઇન લાસ્ટ વર્ડ, સ્વ જ્ઞાન સ્વભાવ વડે जे अधिक भिन्न छे, हाँ जे अधिक का अर्थ ही भिन्न छे, ऐसा किया। यानी ये सब इन बाकी बातों से, कौन से इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनसे ये जुदा है ये बताना चाहते हैं। अधिक छे ऊपर ऊपर तरे छे ऐसा बोलते हैं। अने ते श्रेष्ठ छे आई पण आ कहे छे के ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर ते बदत जीवना चैतन्य भाव प्राण छे आहा हा अंतरदृष्टि करी आवा शुद्ध भाव प्राण थी जीववू तेनू नाम जीवन छे अने ते श्रेष्ठ छे। चैतन्य भाव प्राण थी जे जीवे छे जीवतो हतो अने जीवशे तेने भगवाने जीव कह्या छे। माटे बहिर्लक्ष मटाड़ी अंतर्मुख था अने यथार्थ जीवन प्रकट कर। दश प्राण रूप जीवत्व छे ते अशुद्ध छे जड़ प्राणों थी जीव जीवे छे ए तो वात नहीं पण पांच इंद्रियो एटले भावेन्द्रियो अने मन वचन काया आयु ने श्वासोश्वास अंदर जीवनी योग्यता रूप एवा दश प्राण रूप जे अशुद्ध जीवत्व तेनाथी जीव जीवे छे ए वात पण आई नथी लेवी। आई तो शक्तियोना अधिकार मां शुद्ध जीवत्वनी वात छे। शक्ति की बात हमने बार बार याद किया था ना आपको, हाँ सम्यक रूप से स्वभाव रूप से परिणत शक्ति लिए है। शुद्ध चैतन्य भाव प्राण ने धारण करी राखे छे एवी जीवत्व शक्ति प्रत्येक आत्मा मां त्रिकाल छे अने साधक ने एटले धर्मी पुरुष ने अंतर मां अभेद एक ज्ञान मात्र भावनु जे परिणमन थयुं तेमां भेगी जीवत्व शक्ति पर निर्मल उछळे छे। आहा हा जेमां शक्ति नुं आवुं शुद्ध जीवत्व रूप परिणमन थाय छे एवुं ज्ञानानंद में अनाकुल शांति में अने प्रभुता में जीवन समकीर्ति जीवे छे। जीवे तेज वास्तविक जीवन छे। आहा जीवनी जीवत्व शक्ति एनी अनंत शक्ति मां व्यापक छे। शक्ति कहो गुण कहो स्वभाव कहो के भाव कहो ते एक भाव सर्व भावों मां व्यापक छे। अभी इसको कितना कितना नाम दिया देखो। जीवत्व शक्ति आनंद शक्ति में व्यापक छे। अभी शक्ति कहो गुण कहो स्वभाव कहो के भाव कहो ते एक भाव सर्व भावों में व्यापक छे। ये जीवत्व शक्ति सब में व्यापक है। शू कीधु एक भाव अनंत में व्यापक छे। आहा जीवत्व शक्ति द्रव्य व्यापक छे द्रव्य मां व्यापक छे चाहिए गुण मां व्यापक छे ने शक्तिमान त्रिकाणी ध्रुव द्रव्यनी दृष्टि थता पर्याय मां पण व्यापक छे। अरे अनादिति अज्ञानी जीव ने निज शक्ति नु भान नहीं होवा थी एनी पर्याय मां शक्ति व्याप्ति न हती विकार व्याप्तो हतो तेने शक्ति नु फल एटले कार्य न हतु पण जा शक्ति नो महिमा लावी शक्तिमान द्रव्य दृष्टि मां लीधी शक्तिमान द्रव्य मां दृष्टि दीधी त्यां पर्याय मां निर्मल जीवत्व प्रकट थयुं एवुं निर्मल ज्ञानानंदमय जीवन प्रकट्युं के हूँ द्रव्य प्राणो तेने अशुद्ध भाव प्राणो थी जीवुं छूं एवी दृष्टि तत्काल छूटी गई। डॉक्टर साहब बात आई ख्याल में? हाँ चलो व्यवहार प्राणों ने आशय छूटी गयो आवी बात समझाणू काई। आहा हा केवड़ी पर महात्मा एम कहे छे के भाई तारी चीज में एक जीवन नामनी शक्ति छे। जीवन कहो या जीवत्व कहो एक ही बात उन्होंने बताई है ते तारू निज सत्व छे। हवे त्यां शक्ति अने शक्तिवान ना भेद नु लक्ष्य छोड़ी यानी गुण और गुणी अभेद एक ज्ञान मात्र भाव नु अंतर लक्ष्य करता तारी जीवन शक्ति तत्काल प्रकट थाय छे ते द्रव्य गुण ने पर्याय त्रणे मां व्यापक छे। आहा द्रव्य मां जीवत्व गुणों मां यहां द्रव्य मां लिखा ना भाई गुणों मां जीवत्व अने पर्याय मां जीवत्व प्रकट थाय छे अर्थात तारी जीवन शक्ति क्रमे निर्मल निर्मल परिणमे छे। जो આ શરીરાદી તારા આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એકેમાં વ્યાપતા નથી. કેમ વ્યાપતા નથી દિવ્યાબેન? ભિન્ન દ્રવ્ય છે અને એ બે દ્રવ્યોમાં, હા બરાબર, બહુ સારું. આ શરીરાદી તારા આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં એકેમાં વ્યાપતા નથી. આ પુણ્ય પાપ આદિ વિકાર, પહેલે તો પરદ્રવ્ય કો લિયા, અભી યહાં વિકાર, યહાં શરીર કી બાત કરી, યહાં વિકાર કી. આત્માના દ્રવ્ય ગુણમાં વ્યાપતા નથી, ક્યુંકી વિકાર નામ કા કોઈ ગુણી નહીં હૈ. એક સમયની પર્યાયમાં તેઓ વ્યાપે છે, તથાપી સર્વ પર્યાયમાં તેઓ વ્યાપતા નથી. ત્રીજી વાત, જ્યારે દ્રષ્ટિવંતને આ જીવત્વ શક્તિ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપે છે, આહા, તેથી પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં વ્યાપક એવી જીવત્વ શક્તિથી ભગવાન તું જીવે તે યથાર્થ જીવન છે, ઉજ્જવળ સુખમય જીવન છે. લ્યો, આ રીતે ક્રમવર્તી પર્યાયો અને અક્રમવર્તી ગુણોનો પિંડ તે હું આત્મા છું એમ પ્રમાણ સિદ્ધ થાય છે. આ અનેકાંત છે. અહો, વિતરાગ સિવાય આવી ચીજ વેદાંત આદિ બીજે ક્યાંય નથી, શ્વેતાંબરમાંય નથી. અમે તો શ્વેતાંબરનાય કરોડો શ્લોક જોયા છે. આય કહે છે, ચૈતન્ય માત્ર ભાવ પ્રાણનું ધારણ કરવું જેનું સ્વરૂપ છે, એવી જીવત્વ નામની શક્તિ જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં એક એટલે અંદર આત્મામાં ઉછળે છે. એક જ્ઞાન માત્ર ભાવ કીધો એમાં અંદર અંતરલીન સર્વ અનંતી શક્તિઓ ઉછળે છે એમ વાત છે. યાને હમને ઇન શોર્ટ ઇસકા અર્થ એસા લિયા થા ના, સર્વ ગુણાંસ્તે સમ્યક્ત્વ, યાને એક ગુણ સ્વભાવરૂપ હો ગયા. હમ તીન કી બાત કરતે ના, શ્રદ્ધા જ્ઞાન ઓર ચારિત્ર, ઇનમેં સ્વભાવરૂપ પરિણમન ચાલુ હો ગયા તો અનંત ગુણો મેં સ્વભાવરૂપ. એસા કભી નહીં હોગા કે એક દો ચાર પાંચ મેં સ્વભાવ ઓર બાકી મેં વિભાવ. તો કહેતે હૈ અંદર અંતરલીન સર્વ અનંતી શક્તિ ઉછળે છે એમ વાત છે. હા, હું જ્ઞાન માત્ર આત્મા છું એવો જ અંતરલક્ષ્ય અનુભવ થયો. આહા હા, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન જ્યાં પ્રકટ થયું ત્યાં સાથે આનંદ સુખ વીર્ય પ્રભુતા જીવત્વ આદિ અનંત ગુણની ક્રમવર્તી નિર્મળ પર્યાય ઉછળે છે. આવી સૂક્ષ્મ વાત સમજાય એટલી સમજો પ્રભુ. આ તો સહજે અમૃત ઉલસ્યો ને માહી મોતી તણાતા જાય, ભાગ્યવાન કર વાવરે એની મોતીએ મુઠીઓ ભરાય. યાને સમુદ્ર મેં સમુદ્ર ઉલ્લસા, યાને ક્યાં હો ગયા, યા અંતર મેં સ્વભાવ રૂપ પરિણમન ચાલુ હો ગયા ને માહી મોતી તણાતા જાય, યાને ઉસ સમુદ્ર મેં જિસ તરફ મોતી હૈ વો બહાર આતે હૈ, એસા યહાં પર ભી બાત ચલ રહી મોતી તણા. ભાગ્યકાન ભાગ્યવાન કર વાવરે, યાને ભાગ્યવાન જો હોતે ઉસકે હાથ મેં વો મોતી આતે હૈ, એની મોતીએ મુઠ્ઠીઓ ભરાય. યાને ભાગ્યવાન કોણ કહા કે જો સમ્યક્ત્વી હો જાવે વો? ભગવાન કહે છે અંતરદૃષ્ટિ કરતા જ તારો ચૈતન્ય દરિયો અનંત ગુણરત્નોથી પર્યાયમાં ઉછળ્યો છે, પ્રકટ થયો છે. માટે અહીં જ્ઞાન માત્ર કીધો એમાં એકાંત ન સમજવું. વાસ્તવમાં જ્ઞાન માત્ર આત્માની દૃષ્ટિ થતા જ્ઞાન સાથે અનંત ગુણની ક્રમવર્તી નિર્મળ શુદ્ધ પર્યાય ઉછળે છે. જુઓ, અહીં આ શક્તિના અધિકારમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ નિર્મળ પર્યાયોને જ ક્રમવર્તી લીધી છે. રાગાદિ અશુદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય તેને અહીં ક્રમવર્તી પર્યાયોમાં લીધી નથી, કેમ કે શક્તિના અધિકારમાં વિકારી પર્યાયોને પરગણી છે. ઉસકો પર કહી દીયા, સ્વ નહીં. આ જ્ઞાન માત્ર આત્મા કીધો એમાં દૃષ્ટિ પૂરણ દ્રવ્ય જે એક ન્યાયક રૂપ છે તેના ઉપર જાય છે અને ત્યારે પર્યાયમાં નિરાકુલ આનંદ અને શુદ્ધ પવિત્ર જીવન પ્રકટ થાય છે. આનું નામ ધર્મ અને આનું નામ જીવન છે. बाकी वर्तमान पर्याय निज द्रव्य ने एक ज्ञान मात्र आत्मा ने छोड़ी ने पर ने विकार ने देखे ये तो विपरीत दृष्टि छे। अन्य मत में भजन में आवे छे ने नंदलाल नहीं रे आऊं रे घर काम छे ये समझ में। श्री कृष्ण बुलाते हैं तो बोलते मैं नहीं आऊंगा, क्यों? मुझे अभी घर का बहुत काम पड़ा हुआ है, टाइम नहीं। यहाँ लिखा ना आ तो श्री कृष्ण ने जे सखी हती ते कहे छे तारी पासे नहीं आऊं केम के घरे काम छे। तेम अनादित्य ज्ञानी जीव हटती निज आत्मा प्रति एवो ज भाव राखे छे नंदलाल नहीं रे आऊं पर काम छे। आपने बोला ना स्वाध्याय मां नहीं आऊं, यहाँ लिखा है वो भाई हम तो पढ़ने को नहीं आता है ना। आपने प्रश्न पूछा तो ये पर काम छे, स्व काम करो तो भले ना रो ना यार त्याज क्या कम आओ यहाँ आ तो पर काम छे। एम के एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ प्रश्न उठता है। क्यों डॉक्टर साहब आपके भी प्रश्न का उत्तर आया और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया और नहीं आता है तो हम खींचा ताने करके लाते हैं ने अभी तो स्ट्रेट अवे हैं। हाँ अज्ञानी जीव ने आना दे थी एवी मिथ्या मान्यता छे के तेनी पर्याय स्वघर मां न जता परना काम मां ज गूंचायेली रहे छे। पर काम नु ए बहानु काढ़ी स्वघर मां जती नथी। परंतु भाई ए महाविपरीतता छे एनु फल बहु आकरु छे बापू। पोताने जाने देखे तेज साचु ज्ञान छे अने तेज साचु जीवन छे। जो आ शक्तियों ने अधिकार छे आ शक्तियों विशेष वर्णन श्री दीपचंद जी कृत अध्यात्म पंच संग्रह ग्रंथना ज्ञान दर्पण विभाग में बहु सुंदर आवे छे। वड़ी आ जीवत्व शक्ति नु वर्णन पंडित श्री दीपचंद जी चित विलास में पण बहु सुंदर करेलू छे। पंडित श्री दीपचंद जी समकीजी आत्मज्ञानी पुरुष हता तेवो एक स्थान पर कहे छे बधा आत्मा साधर्मी छे। भगवान ने संबोधी ने कहे छे भगवान तू अमारो तू तम हूँ तमारो साधर्मी छू। क्या कहते हैं भगवान को कह रहे हो अमारी पर्याय मां जरी भूल छे तेने एक बाजू राखिए तो आहा हा जेम आप द्रव्य स्वरूप थी परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान छो तेम हूँ पन द्रव्य रूप थियो पर्याय थी नहीं द्रव्य रूप थी परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान छू आहा हा तेथी आप मारा साधर्मी छो। अरे शुद्ध जीवत्व शक्ति अपेक्षा बधा आत्माओ मारा साधर्मी छे तेवो एक ठेकाणे कहे छे आ जीवत्व शक्ति जीवने लोकमां महा सुखदायी छे। आहा जेनी पर्यायमां जीवत्व शक्ति व्यापी प्रकट थई तेना सुखनुं शुं केवुं। लोकमां ते अपार सुखी छे ने ते परम सुखने प्राप्त थशे। आ तो अध्यात्मनी अलौकिक वातु बापु आ कोई लौकिक कथा वार्ता नथी। आहा हा अतीन्द्रिय आनंद मां झूलता पवित्र जीवन ना धारक वितरागी दिगंबर संतोए अंतर मां अकारण करुणा नो विकल्प उठ्यो। अकारण क्यों कहा? क्योंकि उनको किसी को देख मन आ सहज देर यू आर अने आ शास्त्र रचाई गया छे। आहा तेवो तो जे विकल्प उठ्यो तेमाय स्वामी नथी तेनाय स्वामी नथी। यानी अभी हमने देखा ना तुम भी इसका करता मैं नहीं हूं तो मोह से मत नाचो ऐसा कहा ना अपने अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। ते वो आई शास्त्र मां कहे छे भगवान अमृतचंद्राचार्य टीका में लिखते हैं हाँ तू ज्ञान आनंद मैं आपको बताऊंगा निकाल के तू ज्ञान आनंद इत्यादि अनंत गुण लक्ष्मी नो धरना ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा छो अने आ चैतन्य मात्र प्राण ने धरनारी जीवन शक्ति पन तारी अंतरंग लक्ष्मी छे। आहा आवी जीवन शक्ति एक ज्ञान मात्र वस्तु ना आश्रय मा जता पर्याय मा प्रकट थाय छे अने तारे पर्याय मा अतीन्द्रिय आनंद नी भरती उछड़े छे। आ रीते जीवन शक्ति मा ध्रुव उपादान अने क्षणिक उपादान बनने आवी जाए छे। क्या बात है ત્રિકાળી જીવન શક્તિ તે ધ્રુવ ઉપાદાન છે અને પર્યાયમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું નિર્મળ પરિણમન થયું તે ક્ષણિક ઉપાદાન છે. આહા હા, દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ થતા એ સમજમાં આવ્યા ને, દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ થતા જીવન શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન થયું ત્યારે પર્યાયમાં નિર્મળ જ્ઞાન, નિર્મળ આનંદ, નિર્મળ પ્રભુતા, નિર્મળ સ્વચ્છતા ઇત્યાદિ અનંત ગુણની નિર્મળ દશા પ્રકટ થાય છે. આનું નામ ધર્મ અને આનું નામ મોક્ષ માર્ગ છે અને આ ક્ષણિક ઉપાદાન છે. આહા હા, આ ભાવમાં ક્ષણિક ઉપાદાનમાં વ્યવહારનો અભાવ એટલે નાસ્તિ છે, આ અનેકાન છે. વ્યવહારનો સર્વથા અભાવ છે એમ નહીં, વ્યવહારમાં વ્યવહાર ભલે હો પણ શક્તિના પરિણમનમાં વ્યવહાર, શક્તિના પરિણમનમાં વ્યવહાર નામ અશુદ્ધતા રાગ સમાતો નથી, અભાવરૂપ છે. કેમ કે શક્તિ શુદ્ધ અને તેનું પરિણમન પણ શુદ્ધ છે. અશુદ્ધતા એ કંઈ શક્તિનું કાર્ય નથી. અશુદ્ધતા તો પરના ને પર્યાયના લક્ષે થાય છે, પરંતુ ધર્મીને પરની ને પર્યાયની દ્રષ્ટિએ જ છૂટી ગઈ છે. સમજાણો કાંઈ? એ પડ લેતે એક પેરેગ્રાફ જો દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિઓ છે ત્યાં એક શક્તિનું ક્ષેત્ર ભિન્ન અને બીજા શક્તિનું ક્ષેત્ર ભિન્ન એમ નથી, કેમકે દોનો હી શક્તિઓ કા ક્ષેત્ર એક, દ્રવ્ય એક, કાલ એક, ભાવે ભિન્નતા, એટલે દો મિલકર એક નહીં હોતે. પરંતુ એક જીવન શક્તિ બીજી અનંત શક્તિમાં વ્યાપક છે, એક એક શક્તિ બીજી અનંતમાં વ્યાપક છે, વળી એક એક શક્તિ બીજી અનંતને નિમિત્ત છે. એટલે કે એક ગુણ કારણ એટલે નિમિત્ત અને બીજો ગુણ કાર્ય એમ કહેવામાં આવે છે. જે શક્તિ કે કારણ દ્રવ્ય કા દ્રવ્ય પણ કાયમ રહેતા વગેરે વગેરે. આ વ્યવહાર છે નિશ્ચયથી તો, ગુણ પોતે જ કારણ છે ને પોતે જ કાર્ય છે. નિમિત્ત એટલે શું કે એક ગુણના પરિણમન કાળે બીજા ગુણ અનુકૂળ પણે છે, બંનેનો સમકાળ ને સમવ્યાપ્તિ છે બસ. યાને દોનો કા કાલ એક હૈ, ક્ષેત્ર ભી એક હૈ. કોઈ કોઈનું પરિણમન કરી દે છે એમ નહીં, ગુણના કાર્યનું ઉપાદાન તો ગુણ પોતે જ છે. હવે આવી આવો વિતરાગનો માર્ગ સૂક્ષ્મ છે, તેને સમજ્યા વિના લોકો તો વ્રત કરો ને તપ કરો ને ભક્તિ કરો એમ એકલા ક્રિયાકાંડમાં ચડી ગયા છે, પણ એ તો બધી રાગની ક્રિયા છે બાપુ. એ કાંઈ ધર્મ નથી, પણ ધર્મથી વિરુદ્ધ ભાવ છે. એ ધર્મથી વિરુદ્ધ ભાવ કયો હોય બાપા? અરે અધર્મ ભાવ ક્યાં ગમશે, ઝુમઝુમ કરતે હૈ જાવણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો.